ওম শান্তি। আজকে ইস সেশন মে রেসিপি টু জো বুক হ্যামারি ও হমে পড়না হ্যাঁ এক্সপ্লোরিং ভ্যালুজ। বেসে তো আপ সবই নে পুরা কোর্স কিয়া হুয়া হ্যাঁ হমারা জো ভ্যালু এজুকেশন অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিটি কা। জব প্রশ্ন উত্তর চল রে থে তব বহুত সারি বাতে সুন ভি রই থি আর মন মে বহুত সারি বাতে উসকা উত্তর ভি চল রা থা। বেসে ইয়ে ট্রেনিং প্রোগ্রাম হ্যাঁ, ট্রেনিং লে চুকে লোগো কো ফির ওয়াপস ট্রেন করনা, জেসে হম কেতে না কি ভ্যালুজ কো পড়ানা, ভ্যালু কো ধারণ করনা, ভ্যালু কো পড়না, বহুত সারি বাতে হমারে সামনে আতি হ্যাঁ। পড় তো হম সব কুছ লেতে হ্যাঁ, জ্ঞান তো জেসে বাবা কেতে না জ্ঞান তো বাবা নে দিয়া হ্যাঁ, লেকিন জ্ঞান কো কেসে লাইফ মে অ্যাপ্লাই করনা। তো ইয়াহা তো সবই পড়ে হুয়ে আপ সবই হ্যাঁ, ये एलुमनी एसोसिएशन की बहुत अच्छा विचार रहा और इसमें ये जो बुक्स बनाई है रेसिपी टू, रेसिपी टू में एक्सप्लोरिंग वैल्यूज उसका हेडिंग दिया गया है और टोटल इसमें आपने यदि बुक देखी हो या ली हो, बुक्स जो है ऑफिस में मिल रही है, तो उसमें 7 यूनिट है। मैं यहां आपको पढ़ाने नहीं आई हूं या इन चीजों को बताने आई हूं कि क्या हम कहीं भी जाते हैं। ये रेसिपी बहुत अच्छा नाम दिया है इसको, रेसिपी प्रोग्राम को इतना अच्छा नाम दिया है कि आप कहीं भी स्कूल कॉलेजों में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो लोगों को इसके प्रति आप आकर्षित कर पाएंगे। सबसे पहली बात जो अभी पूछ रहे थे प्रश्न कि स्कूल कॉलेज में हम जाकर के कैसे पढ़ाएं रीजनल लेवल पर या जो है अपने क्षेत्र में, छोटे से गांव में भी भले आप चले जाओ, लेकिन स्कूल कॉलेजों में जब हम जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम वैल्यू एजुकेशन सिखाते हैं, हम वैल्यू एजुकेशन का नाम लेते हैं, साथ में एक शब्द को और जोड़ते हैं स्पिरिचुअलिटी। विदाउट स्पिरिचुअलिटी हम वैल्यूज को न सीख सकते हैं और न ही वैल्यूज को लाइफ में धारण कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हम इसलिए बाद में बोलते हैं क्योंकि एजुकेशन शब्द मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है, मूल्य शिक्षा, तो मूल्यों को कैसे सिखाया जाए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छे लर्नेड सभी हैं, बाबा के बच्चे सभी लर्नेड हैं, लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वो मेथडोलॉजी हमें थोड़ी सी पता नहीं, हमें अपने जो टॉपिक है उसके आधार पर उसको कंटेंट को तो पकड़ के चलना ही चलना है, लेकिन उसको किस प्रकार से रोचक बनाएं। जैसे हम वैल्यूज को सिखाते हैं तो अगर आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल लेवल पे भी आप जाएंगे तो आप 2-3 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, फिर आप उनसे पूछिए कि ये आपका मित्र है तो कहां, वो कहेगा हां है, तो इसकी आप अच्छी बातों को बताइए। वो जब अच्छी बात बताते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम क्या बाह्य रूप से इसको अच्छा कहते हैं किसी व्यक्ति को, क्या उसके बॉडी फिगर को देख करके हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है ये व्यक्ति या ये बहन ये भाई बहुत अच्छा है, क्या हम ऐसा कहते हैं? नहीं कहते ना। तो हम किस आधार पर कहते हैं कि आप अच्छे हो, किस आधार पर कहते हैं? उनकी क्वालिटी को देख करके बोलते हैं ना, तो जो क्वालिटी है हम किसी भी व्यक्ति को अच्छा तब कहते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, किस आधार पर कहते हैं? उसकी क्वालिटी के आधार पर। तो ये क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? वैल्यू है। सिंपल बात में अगर हम उन लोगों के सामने रखेंगे, अच्छा आप बताइए वैल्यूज के बारे में आप क्या जानते हैं, मूल्य क्या है, मूल्य क्या है? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग और ये तो बहुत लंबी लंबी बात हो गई, छोटे बच्चों को तो इतनी सारी बात पता नहीं होगी भाई साहब। हाँ ठीक है, और गुड क्वालिटीज, और एक मिनट, हाँ क्या बोला, चरित्र निर्माण, चरित्र किस आधार पर बनता है? हाँ, मनुष्य के ऐसे गुण जो दूसरों को सुख दे। तो क्या हम चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि दूसरों को हम दुख दे? नहीं चाहते ना, तो इसका मतलब क्या है, हम दूसरों को क्या देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। तो वो सुख कैसे देंगे, हमारे पास होगा तब तो देंगे ना, सुख कैसे देंगे, वो सुख कैसे आएंगे, वैल्यूज के आधार पर। तो वो वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू कौन सी होगी? हाँ, सुख शांति प्रेम आनंद ये सब क्या है, वैल्यूज है। तो ये वैल्यू क्या पैसे से मिलती है, ये क्या पैसे से मिलती है, फिर इतने घोटाले घपले कांड कैसे हो जाते हैं। जो चीज पैसे से नहीं मिलती है परंतु हमारे अंदर है, ये क्या है, वैल्यूज क्या है, हमारी इनर क्वालिटी है। और इनर क्वालिटी को कैसे हमें बाहर निकालना है, वो बात है एक्सप्लोरिंग वैल्यूज में, ये बातें इसमें हैं। हम क्या करते हैं, सीधे ही जाकर के स्कूल कॉलेज में हम ये बताते हैं कि भाई हम तो ब्रह्मा कुमारी से हैं। उन लोगों का एक सिंपल सा उन लोगों का नजरिया है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जब हम जाते हैं व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं तो ये तो आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, दूसरी कोई बात करेंगे नहीं। तो पहले से ही उन लोगों को हम स्पिरिचुअलिटी और ये कह कह के उनका जो है ना ये भारी कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि फिर इसमें से तो कैसे वैल्यूज एक्सप्लोर हो सकती है। इसीलिए तरीका जो है वो थोड़ा सा ऐसा रखें कि सामने वाला तुरंत ही इसको एक्सेप्ट करे। उसके लिए बहन बोल रही थी कि क्वालिटी हैंड्स हमारे पास नहीं, हैंड्स तो सारे ही क्वालिटी वाइज हमारे पास है, बहुत सारे क्वालिटी वाले, लेकिन उसको कैसे हम बच्चों के सामने रखें, क्योंकि हम जानते हैं आजकल बच्चों को क्या पसंद आता है, आजकल लोगों को क्या पसंद आता है। हाँ, आपके पास स्टोरी है तो आप स्टोरी भी बता सकते हो, लेकिन स्टोरी को भी ऐसी होनी चाहिए जब हम लाइव जो उदाहरण अपने लाइफ के बताएंगे ना तब लोग मानेंगे कि देखो भाई हमने अपनी लाइफ में इस तरह से वैल्यूज को धारण किया है। मैं भी ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 26 साल से कॉलेज लाइफ से मैं ब्रह्मा कुमारी थी, तो कॉलेज में भी जब हम पढ़ते थे ना तो हमारे टीचर हमारे सामने खड़े होते थे तो हम सोचते थे कि ये भी, क्योंकि टीचर हमारे ब्रह्मा कुमार थे तो इसलिए सब बच्चे कहते थे देखो अभी ये आत्मा और परमात्मा की तरफ ले जाएंगे डेफिनेटली। क्लास में भी, क्योंकि पढ़ाते थे भी वही भक्ति वाले पद पढ़ाते थे, क्योंकि हम हिंदी के प्रोफेसर हैं, मतलब हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में तो मीरा तुलसी सूरदास बहुत अच्छे अच्छे पद है, लीला गान है, तो अब धीरे धीरे वो भक्ति से स्पिरिचुअलिटी तक ले जाते, लेकिन वो भी बहुत अच्छे अनुभव थे, परंतु तब हमें पता नहीं था, वो तो परमात्मा ने कुछ ऐसा अनुभव कराया, क्योंकि सबकी लाइफ में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, इसका मतलब है कोई न कोई अनुभूति जरूर की है, नहीं तो यहां तक नहीं आते। बिना अनुभूति के कोई भी बेज लगा करके नहीं बैठेगा। लाइफ में अपने आप को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का एक अभिमान, वो स्वाभिमान कहेंगे हम, तो वो कैसे बनते हैं, वो वैल्यूज को लाइफ में धारण करते हैं। तो वो वैल्यूज जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो वैल्यू क्या है हमें पता होना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि हमने 2011 में 2010 में जब पीजी डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ और हमने एडमिशन लिया, तब हमने मूल्य शिक्षा की वो किताबें पढ़ी थी। उसके बाद आज एलुमनी एसोसिएशन की मीटिंग में आए हैं और यहां हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक्सप्लोरिंग द वैल्यूज। तो हमने याद किया कि 2000, ये जो बेंजी बता रही है वो तो 2010 में 11 में हमने पढ़ा है, आज 2016 का वर्ष है, 6 साल से हम मूल्य शिक्षा की किताबों को खोल नहीं पाए हैं। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वो भी हमारी स्टूडेंट लाइफ थी। परंतु जब यहां दूसरा अनुभव है, दूसरा अनुभव इस रूप में है कि जब वैल्यू एजुकेशन की किताबें हमने पढ़ी तो सबसे पहले लोगों को क्या लगा था पता है, बहुत हैवी है, समझ नहीं आता इसमें क्या लिखा है। लेकिन बार 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 पढ़ने से, जैसे कहते हैं ना, योग शुरू शुरू में योग नहीं लगता है, सीधा ही भगवान से डायरेक्ट बात करने नहीं लग जाते हम, ऊपर वाले नीचे आया, भगवान आया और हमसे बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है लेकिन उसकी भी अनुभूति, उसको भी हम बार 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 याद करेंगे ना, तब जाकर के भगवान भी हमें याद रहता है, नहीं तो भगवान भी छूट जाता है, ऐसा होता है। तो ये वैल्यू का भी ऐसा ही है, जितना जितना हम अपने जीवन में वैल्यूज को या अपनी इनर क्वालिटीज को याद करते रहेंगे, मूल्य शिक्षा में ये सिखाते हैं कि वैल्यूज को आप बार 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 याद करो कि मेरे अंदर ये अच्छी बात है, तो वो अच्छी बात को आप बार बार याद करोगे ना तो बुरी बातों को हम भूल जाते हैं, कमजोरियों को हम भूल जाते हैं, कमजोरियों को भूल जाते इसलिए अच्छी बातों को याद हो जाती, ऑटोमेटिक याद हो जाती, फिर वो सरल लगती है। तो दुनिया में भी ऐसा ही है, जब हम वैल्यू एजुकेशन का कोर्स पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो वहां भी हम सीधे ही पहले तो आत्मा परमात्मा की बात न करें, हम ये बात करें कि हम अपने अंदर अच्छी बातों को डालना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर कोई व्यक्ति शांति चाहता है, आनंद चाहता है, दूसरे से स्नेह और प्रेम चाहता है। तो स्नेह प्रेम कैसे हो, तो वो सारे वैल्यूज हमारे अंदर जब तक नहीं होंगे तब तक हम दूसरों को नहीं दे पाएंगे। तो ये जो वैल्यूज की बात है कि वैल्यू क्या है, बहुत सारी बातें आपने किताब में पढ़ी हुई है, इसमें से जो मूल मूल बातें हैं वो सब रेसिपी में डाली हुई है। ये बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी खिचड़ी है जिसमें सब कुछ है, केवल दाल चावल नहीं है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। खिचड़ी में क्या होता है, आप सब कुछ डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो, काजू भी डाल सकते हो, किशमिश भी डाल सकते हो। तो ये हमारी रेसिपी जो है ना, उसमें हम सब कुछ डाल सकते हैं। तो वैल्यूज की बात जब हम करते हैं, रेसिपी टू है, रेसिपी वन आपने पढ़ ली। तो वैल्यूज क्या है, वो सबसे बड़ा सत्य है वैल्यूज। ये सब पीपीटीज आपके पास आ जाएंगी कल, इसकी सीडी बनाई है 42 आवर्स की, केवल इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये जो बुक है उस बुक के सारे लेक्चर की पीपीटीज आपको दी जाएगी, उससे आप बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में जाकर के इसको पढ़ भी सकते हैं। कुछ स्कूल कॉलेज में ये कहते हैं कि आप हमको मटेरियल दो, फिर वो लोग एक्सपर्ट से उस मटेरियल को एक्सपर्ट से जो है वो क्रिटिसाइज करवाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग हमको बुलाते हैं कि भाई आप आओ और इस प्रकार से ये चीज करो। तो हम कुछ नहीं करते, पहले जाकर के ऐसे सप्लाई करते हैं मटेरियल, तो वो लोग फिर पढ़ते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें कहीं भी कोई धर्म की या कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो, जिससे हमारा विरोध हो, ऐसा कोई ऐसी कुछ भी बात नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर बताएं उनको कि ब्रह्मा कुमारी इसका वैल्यू एजुकेशन जो है वो सारे विश्व के सारे धर्म संप्रदाय जाति भाषा वर्ग सबके अच्छी बातों को लेकर के ये बनाया हुआ है, सब सबसे अच्छी बातों को इसमें डाला हुआ है सबसे लेकर के, इसीलिए इसका कोई विरोध कर ही नहीं पाता है और इसी कारण इतनी सारी यूनिवर्सिटियों से हमने एमओयू किए हैं। स्कूलों में भी नो डाउट आप कहते हैं कि बहुत सारे हैंड्स चाहिए, लेकिन जो भी जिस क्षेत्र में है रीजनल लेवल पर वो वहां से अगर कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाता है, आप वो भाई साहब ने कहा ना कि हमें कोई अपडेट नहीं मिलता है, अपडेट आपको अवश्य मिलेगा जब आप आपने कभी ब्रह्मा कुमारी इसकी वेबसाइट खोली हो या आप जिस सेवा केंद्र में रहते हैं, सेवा केंद्र के पास में रहते हैं, जिस सेवा केंद्र से आपका कनेक्शन है आप वहां जाकर के ऑफर करो कि हमने ये कोर्स किया है। तो मैं समझती हूँ कोई बहने ये नहीं कहेंगी कि आप इस कोर्स को आपने पढ़ा है अब आप आसपास के स्कूल कॉलेजों में, आप ऐसा कीजिए वन डे सेमिनार कीजिए, आपके नजदीक की स्कूल कॉलेज में जाके एक दिन का सेमिनार कीजिए और ये पीपीटीज आप ले जाइए और ये बुक्स ले जाइए, फिर आप उनको कहेंगे कि वन डे सेमिनार में हम ये सब बातें कि भाई इसको हम हमारा ये कोर्सेस है और बहुत सारी बातें उसमें आप बता सकते हो वैल्यू एजुकेशन से संबंधित। तो इससे क्या होगा, हमारी वैल्यूज भी एक्सप्लोर होंगी क्योंकि उसके लिए हम भी तैयार होंगे। तो ये सारी बातें, ये हमारी वीकनेसेस को जो वैल्यूज जो है हमारी वीकनेसेस को दूर करती है, कमजोरियों को मिटाती है, ये वैल्यू है। वैल्यू क्या है, ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का सौंदर्य है, कितना सुंदर बनता है जब कोई व्यक्ति आपको ये कहे या आपके बारे में किसी थर्ड पर्सन को ये कहे कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। और जब हम खुश होते हैं तो आप देखना आपका हंसता हुआ चेहरे का फोटो खींचना और फिर आप उसको देखना, उसमें से आपको कितना अपार सौंदर्य दिखाई देता है और वो क्या है, वो हमारी इनर क्वालिटी है। तो इनर क्वालिटी सभी के अंदर बहुत सारी हैं और उस क्वालिटीज को मात्र हमें क्या करना है, क्या करना है, बाहर निकालना है, उसका विकास करना है। लेकिन होता क्या है, मोरल, इसमें क्या बताया, क्या हो गया है, कॉन्शियस हैज बीन करप्टेड बाय मटेरियलिज्म, लेकिन हम उसके पीछे भौतिकवादी अधिक बन गए हैं। अगर हमारे सेंटर पर 20-25 लोगों के लिए रहने का बना बड़ा भवन हो तो ही अच्छा है, ऐसा हमारा मकान बंगला है तो हम हमारी वैल्यूज अधिक है, ऐसा है, ऐसा है नहीं है ना। तो फिर क्योंकि हमारे अंदर वो वैल्यूज मटेरियलिज्म के कारण सारी वैल्यूज वो मटेरियलिज्म की परत छाई हुई है, उस परत को उखाड़ना है, खाली इतना करना है। क्या हो गया, यदि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास प्रेम है, आप क्या देंगे, कोई पूछते हैं आप क्या देंगे तो हम कहते हैं भरपूर प्यार देंगे, प्रेम देंगे, सुख देंगे, आनंद देंगे, खुशी देंगे, और क्या देना है आपको, क्या चाहिए। तो चीज भौतिकवादी होने के कारण आज ये जो भ्रष्टाचार आदि हो गया है ना, बहुत करप्शन बढ़ गया है, ये सब वैल्यूज की कमी के कारण। तो वैल्यूज क्या है, ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वैल्यूज का, तीन टाइप की वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल, ह्यूमन और टेम्पोरल। यूनिवर्सल वैल्यू आप जानते हैं, वो वैल्यूज हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती, कभी परिवर्तित नहीं होती, वो हमारे हमारे अंदर नैतिकता का एक ऐसा मापदंड बनाकर चलते हैं जिसको हम नकार नहीं सकते, वो किसी भी दिशा किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित न होने वाले यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं, जिसके अंतर्गत एथिकल वैल्यूज आते हैं, जो हमारे नीति शास्त्रीय वैल्यू स्पिरिचुअल है, फिलोसॉफिकल है, एस्थेटिक है और मैथमेटिकल है। इसमें जो वैल्यूज सब टाइप के दिए हैं और दूसरे उसके वैल्यूज दिए हैं कि ये कौन कौन से हैं, करेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एथिकल वैल्यूज में, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ये सब आप जानते हैं क्योंकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है, ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, है ना, ये सारे मानवीय मूल्य हैं, और टेम्पोरल जो मटेरियल संबंधी है, अल्पकालिक मूल्य जो कभी बदलते रहते हैं परिस्थितियों के अनुसार, जो बदलते रहते हैं वो टेम्पोरल वैल्यू है। यूनिवर्सल वैल्यू क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करते हैं, सत्य, जैसे सत्य है, वो सत्य हम इसको एक शब्द और आगे जोड़ देते हैं, सनातन सत्य, ना? जो सनातन सत्य है कभी भी खत्म नहीं होता, उसको यूनिवर्सल वैल्यू कहते हैं। सत्य की परिभाषा यदि बदल जाए तो, जैसे हम एक हमारी नीति शास्त्रों में या हमारे संस्कृति में महाभारत रामायण आधारित बहुत सारी कथाएं हैं, हम कहते हैं कि वैल्यूज पर, हाँ, आप लोग कथाओं की कहानियों की बात कर रहे थे कि स्टोरीज, हमने एक बुक उसमें मूल्य शिक्षा के प्रेरक प्रसंग लिखी है, उसमें एक एक वैल्यू पर पांच पांच स्टोरी है, अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी, मिलती है हमारे यहां, वो बनाई थी। परंतु उसके बाद हमने सोचा जब वैल्यू एजुकेशन में स्टोरीज के आधार पर हम मूल्यों तक जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक युधिष्ठिर की कथा आती है, सत्यम वदन सॉरी हां सत्यम वदम धर्मम चरम, परंतु युधिष्ठिर ने एक बार असत्य बोला, असत्य बोला था ना, अश्वत्थामा। देखो, एक तरफ युधिष्ठिर का कैरेक्टर हम सत्यवादी के रूप में, सत्यम वद धर्मम चरा के रूप में बताते, दूसरी तरफ वो कहता है नरोवा कुंजरोवा। यूनिवर्सल में वो, ये यूनिवर्सल वैल्यू नहीं हुई, अगर नरोवा कुंजरोवा है तो वो यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि मूल्य गुण शक्तियां विशेषताएं, वो वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, उसमें सत्य सत्य होता है, तो लोगों ने कह दिया वो अर्ध सत्य बोला, आधा सच बोला, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आधा झूठ बोला, आधा सच ये बोला कि नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरा है लेकिन हाथी है कि मनुष्य वो पता नहीं है। तो मूल्य शिक्षा में अर्ध सत्य नहीं होता, सत्य सत्य होता है या असत्य होता है, दोनों में से एक हो जाता है। तो जो नहीं बदलता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र की हम बात करते, उसका सत्य सब कुछ बिक जाने पर भी वो अपने धर्म से, अपने वचनों से नहीं हटा, उसको कहेंगे सत्य। तो ये ऐसी बातों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो जब हम वैल्यूज को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो हमें ऐसे उदाहरणों के माध्यम से सिखाएंगे ना किसी को, बच्चों को, तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई ये बात है, ये तो पता ही नहीं था। तो जो बात पता नहीं होती ना, वो जब हम उनको पढ़ाते हैं तो उनको कितना अच्छा लगता है, ओ तो ये नई बात थी, तो उनको इंटरेस्ट आएगा। तो वैल्यूज को जब हम सिखाएं, क्योंकि वैल्यू ऐसा टॉपिक है कि लोगों को भारी लगता है, कहना सीख देना अच्छा लगता है, लेकिन कोई हमें सीख दे तो पता है मुझे सब पता है, ऐसे कहते हम। तो ये ऐसी ही बात है, मूल्य अच्छे लगते हैं, मूल्य शिक्षा अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाएं कैसे? क्योंकि मैं यहां खड़ी होकर के यदि झूठ बोलती हूं, आपको पता है मैं रोज झूठ बोल रही हूं, और मैं यहां सत्यवादी हरिश्चंद्र की स्टोरी आपको सुना रही हूं, तो आपके मन में क्या होगा? फिर वो प्रभावी नहीं होगा, सामने वाले पर वो प्रभावी नहीं होगा। तो कई बार हम अपनी लाइफ में या अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीजों को देखते हैं, ऐसे उदाहरण हमें मिल जाते हैं लाइव। तो यदि हम लाइव उदाहरणों से वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाएं, हमारे सामने तो बहुत सारे लाइव उदाहरण हैं। हमारी दादी जानकी जी हैं, 100 साल हो गए उनको, 100 साल इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। आजकल तो छोटे बच्चे बोर हो जाते हैं, हे भगवान अब तो उठा ले, छोटे बच्चे कहते हैं, बड़ों की बात छोड़ो। तो 100 साल तक दादी ने तो कभी नहीं कहा होगा ना, हे भगवान अब तो उठा ले, हैं? दादी ने कहा होगा क्या ऐसा? क्यों? सोचिए कि दादी की लाइफ में, दादी जब कुमारियों का क्लास करा रहे थे एक बार दादी जानकी जी, तो वो ऐसे अनुभव कराती हैं परमात्मा का, से बाबा 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 बोलती रहती ना दादी, तो बाबा बाबा करते उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत सारे प्रसंग वो सुनाती है। तो ऐसे लाइव प्रसंग जीवन के जब वो सुनाते हैं ना, तो वहां बैठी हुई सभी कुमारियों के आंखों में आंसू आ गए प्रेम के। क्यों? दादी ने प्रेम का बाबा के साथ इतना अच्छा वर्णन किया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए, और पिन ड्रॉप साइलेंस, और सभी सुन रहे थे। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे वाक्य हैं, है ना? जब हम 87 में जब बाबा मिले माना ब्रह्मा कुमारी संस्था से हम जुड़े, और 90 में मैं बाबा से मिलने के लिए पांडव भवन में गई, और पांडव भवन में आगे ऐसे कुमारियां बैठती थी, पहले दादियां ऐसे सोफे पे बैठती थी, और माताएं और भाई लोग सब ऐसे बैठते थे, कुछ लोग आगे बैठते थे जो बैठ सकते हैं नीचे। तो बाबा इतने नजदीक से मिलते थे पहले, और वो जो अनुभव हम सबको सुनाते हैं ना जब भी क्लास में, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन हमारे घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता था, पर मेरी सिस्टर को जब हम माउंट आबू गए तो हम ऐसे निकले देखने के लिए, तो मैंने कहा चलो ओम शांति भवन बताते। फिर खिड़की में से जब मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि मैं वहां बैठी थी और बाबा यहां आए थे, और बाबा ने मेरे को ये प्रश्न पूछा, और बाबा ने इतना, तब मुझे भगवान मुझे यहां मिला था। मैंने बहन को बोला, मेरी सिस्टर को, कि मुझे भगवान के दर्शन फर्स्ट टाइम यहां हुए थे। मना ऐसे इस चक्षु से मैंने परमात्मा के दर्शन यहां बैठ के किए थे, ये जगह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सुनकर मेरी सिस्टर की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैंने ऐसे वर्णन किया जैसे मुझे अभी भी बाबा मिल रहे हैं। वो जगह पर मैं जाती हूं ओम शांति भवन में, वैसे तो 25 साल से 26 साल से बाबा से मिलती हूं, मिल रही हूं, कंटिन्यू मिल रही हूं अव्यक्त बाप दादा से, लेकिन वो फर्स्ट टाइम का जो मिलन था, पहला मिलन था, वो पहला मिलन इसलिए याद है क्योंकि बाबा ने उस समय मुझे कहा था, क्योंकि बाबा तो मुरली चलाते हैं, तो उस समय बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो मतलब शिक्षाएं देते हैं, तो बाप की शिक्षाएं मिली है, बाप से सब कुछ मिला है, तो ऐसे सब सुनते हैं ना, कोई बोलता नहीं था वैसे पहले तो बहुत मतलब, और मैं तो नई थी, छोटी बच्ची थी उस समय, कॉलेज में पढ़ती थी, तो मैंने कहा ये कोई बोल नहीं रहे हैं, और बाबा पूछ रहे हैं मिला है, शक्तियां मिली है, तो कोई बोल नहीं रहा है, तो मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, हाँ मिला है, मिली है। तो बाबा ने मेरी तरफ देखा, फिर बाबा ने धीरे से मुस्कुरा के बोला, यूज करना आता है, तो मेरी एकदम से जबान निकल गई कि मैं क्या बोल गई। हाँ, फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा ने वो वरदान दिया कि बच्चे तुम सर्वशक्तिवान बाप के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो, इसीलिए अपनी शक्तियों को पहचानो। उस समय बस वही वाक्य याद है मुझे, कुछ याद नहीं है कि वो बाबा ने कौन सी मुरली चलाई, मतलब पूरी लंबी कितने घंटों की मुरली बाबा तो उस समय चलाते थे, लेकिन जो टचिंग बाबा हमें जो वरदान देते हैं, बस एक वरदान को याद रख के मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं और अभी तक मैं शक्ति स्वरूप हूं। तो ये मूल्य जो है अपने अंदर, कैसे मुझे शक्ति स्वरूप बनना है, खाली एक मूल्य को लेकर के, एक वैल्यू को लेकर के यदि हम चले, संघर्ष तो होगा, स्वरूप बनने में कठिनाइयां तो आती है ना, चैलेंजेस आती हैं। हमारा ये टॉपिक भी इसमें चैलेंजेस वाला कि कैसे चैलेंजेस आती है और हमें चैलेंजेस को मिटाना है। तो बहुत सारे अपनी लाइफ के यदि हम लाइव उदाहरण सबको समझाएंगे तो उनको वैल्यूज के बारे में पता चलेगा कि नहीं ये हो सकता है, नहीं तो क्या होता है। हम बहुत सारी कथा कहानियां युधिष्ठिर की इन सबकी समझाते हैं तो वो युधिष्ठिर थे, बच्चे कई बार ऐसे बोलते हैं मैडम वो तो युधिष्ठिर था ना इसीलिए वो सत्य बोल रहा था, आज के टाइम पे आप सत्य बोल के देखो क्या होता है, बच्चे तुरंत पूछते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन की ऐसी या अपने आसपास की ऐसी चीजों का वर्णन करते हैं, ऐसी बातों का वर्णन करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जैसे बताते हैं ना भाषणों में आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल स्पेलिंग में ऐसे बताते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स जब हम सुनते हैं, लेक्चर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसको जीवन में आत्मसात करना, ये वैल्यू यही चीज है। वैल्यू क्या है, वैल्यूज को यदि हम, क्योंकि सारे वैल्यू तो हमारे लाइफ में हम एक साथ तो नहीं एडॉप्ट कर सकते, परंतु एक वैल्यू हम अपने जीवन का बना करके चले। और सबकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा जैसे मेरी लाइफ में हुआ है, बाबा ने मुझे जो वरदान दिया ऐसा सबको वरदान दिया होगा। बाबा ने, बाबा के नजदीक ना गए हो लेकिन बाबा ने एक मुरली में आपको ऐसी बात जरूर बताई होगी जो आपके हार्ट को टचिंग करती, उस बात को आप अपने जीवन में धारण कीजिए। या दादियों ने आपको, आप जब दादियों से तो मिले ही हैं, सभी मिले होंगे, और दादियों ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो आपके लाइफ को या आपके हार्ट को टच करती है, तो उस बात को लेकर के आप अपने, तो आप अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकते हो कि देखो आपके टीचर ने, आपके मदर या फादर ने, या आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप आदर्श समझते हो, बच्चे आमतौर पर टीचर को आदर्श समझते हैं, तो ऐसी बात बताई हो जो आपके हार्ट को बिल्कुल पिंच कर गई हो, तो उस बात को लेकर के आप अपनी लाइफ का वैल्यू डिसाइड कर सकते हो। तो ये वैल्यू डिसाइड करना भी उनको सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि वैल्यू से आप क्या समझते हो। पावर पॉइंट तो आप बता देते हो बड़ों को कि भाई अच्छा है, पावर पॉइंट में सब बताया है कि क्या है ह्यूमन वैल्यूज, क्या यूनिवर्सल वैल्यूज, लेकिन उसकी परफेक्ट व्याख्या हमको आनी चाहिए। यूनिवर्सल वैल्यूज माना जो कभी परिवर्तित नहीं होती किसी भी देश, काल, समय, वातावरण के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक का अपना परिवार होता है, हर एक की अपना लालन पालन होता है, हर एक का, हर एक की अपनी परिस्थितियां होती है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई आर्थिक रूप से, कोई मानसिक रूप से इतना कैपेबल नहीं होता, लेकिन हर एक में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो अपनी लाइफ को, लाइफ तो जी रहे हैं ना सभी मनुष्य, जीवन तो जी रहे हैं ना, तो मनुष्य जीवन किस आधार पर जी रहे हैं, कोई एक वैल्यू को, कोई एक इनर क्वालिटी को हमने क्या किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है, तभी हम मनुष्य लाइफ जी रहे हैं, नहीं तो मनुष्य जीवन जीना, कभी कभी गीत बनते ना, भगवान को भी कहते हैं आप आके पृथ्वी पर देखो तो सही, मनुष्य का अवतार लेकर देखो तो सही, पता चले तो ये सारी बातें क्यों हम कहते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन एक तो उत्तम भी है और मनुष्य जीवन जीना ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो अच्छा मनुष्य जीवन जिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कोई दूसरे प्राणी तो नहीं है, इसीलिए मनुष्यों का, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ उसको मनुष्य की जरूरत पड़ती है, वो रहना चाहता है, उसकी हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें हम परिवार के बिना नहीं रह सकते, है ना। भले ब्रह्मा कुमारी बहने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनने के बाद सेंटर खोलते, लेकिन सेंटर में भी वो भाई बहनों के साथ परिवार के साथ एक परिवार बनाकर चलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी वैल्यू है, और यही ह्यूमन वैल्यू है, कि जो मानवीय मूल्य क्या है कि मनुष्य को बांध के रखते हैं, एक सूत्र में बांध के रखते हैं। तो ऐसी चीजों को, उसको वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, और ये वही पढ़ा सकते हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है। हम अपनी बात रखने के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जो है वो वैल्यू एजुकेशन हम जो लेकर के आए हैं वो हम ही पढ़ा सकते हैं। क्यों हम पढ़ा सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं मूल्यों को जीवन में कैसे आत्मसात किया जाए, इसीलिए ह्यूमन वैल्यू है ये भी, जैसे कोऑपरेशन, फ्रीडम, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी आदि आदि, ये एग्जाम्पल्स है ह्यूमन वैल्यूज के, कि कोऑपरेशन के बिना मानवीयता नहीं आती। फ्रीडम, स्वतंत्रता बुद्धि की, विचारों की, जब तक हम विचारों से स्वतंत्र नहीं हैं, अगर हम हमारी सभ्यता और संस्कृति में कुछ ऐसी लोक कथाएं, ऐसी कथावार्ताओं के या रूढ़ियों के, परंपराओं के आदि हैं, और उसमें ही अगर हम डूबे रहना चाहेंगे तो हम अच्छे मानव नहीं बन सकते हैं। तो मानवीय मूल्यों के लिए भी ये फ्रीडम जो है, माना विचारों की स्वतंत्रता, हमारे विचार यदि स्वतंत्र है कि सभी मनुष्य को परमात्मा को मिलने का अधिकार है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार सभी मनुष्य को है, और हम चाहते हैं कि जो अच्छी बात है, ह्यूमन वैल्यूज इतनी अच्छी हैं, इन वैल्यूज को हम अपने जैसे दूसरे ह्यूमन को देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो गुण है देना, जैसे लेने का गुण है तो देने का गुण भी हमारे अंदर है। तो ये भी हैप्पीनेस, उससे क्या आता है, हाँ, खुशी देना, खुशी भी देना है, और ऑनेस्टी तो है, ये टेम्पोरल वैल्यूज, ये क्या है, ये इस भौतिकवादी दुनिया में निरंतर जो बदलते रहते हैं, कुछ समय के लिए ये आए फिर चले गए, तो ऐसे टेम्पोरल वैल्यूज हैं। एस्पाउस्ड एंड अप्लाइड वैल्यूज, एक्शन और हमारा बिहेवियर, हमारे व्यवहार से, हमारे वर्तन से पता चलता है कि कितना एक्चुअली हम जो है और करते कुछ और है। बिहेवियर से बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, परंतु कथनी और करनी दोनों समान हो तो बैलेंस, दोनों का बैलेंस लाइफ में जरूरी है। वैल्यू जजमेंट आप जानते हैं, डबल स्टैंडर्ड, पूर्वाग्रह ग्रस्त निर्णय लेते हैं हम, इसको डबल स्टैंडर्ड कहते हैं, हम कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, ये बिलीफ और देयर जजमेंट इज राइट एंड डिक्लेयर्स एज रॉन्ग एनीथिंग दैट डज नॉट कंफर्म टू देयर जजमेंट, दिस इज अ वैल्यू जजमेंट। क्या है, कोई एक व्यक्ति अपनी मान्यताओं के आधार पर पूर्वाग्रह ग्रस्त निर्णय ले लेता है और उसके आधार पर ये वैल्यूज को डिफाइन करता है। वैल्यूज जजमेंट बेस्ड ऑन कल्चर, संस्कृति आधारित होते हैं, ट्रेडिशन आधारित होते हैं, परंपरा आधारित, परंपरा से हमारे बाप दादा जो करते आए हैं वही हमें करना है, तो इसको परंपरा आधारित जजमेंट कहते हैं। परंतु हमें बनना क्या है, वाइज जजमेंट हमारा होना चाहिए, पूर्वाग्रह ग्रस्त निर्णय नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें बताया है कि कल्चर आधारित कैसे होते हैं, कल्चर आधारित जो होते हैं वो क्लैश टेम्पोरल वैल्यू और यूनिवर्सल वैल्यूज के बीच का है। एक होता है यूनिवर्सल, माना जो नहीं बदलने वाले, और दूसरे हैं अल्पकालिक, जो बदलने वाले, बदलते रहते, उसके बीच की जो बात है वो कल्चर आधारित है। कि हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन फिर भी उसको अप्लाई नहीं करते हैं लाइफ में, क्योंकि हमारे यहां तो ये रिवाज है, हमारी संस्कृति में ऐसा है, हमारी सभ्यता में ऐसा है। काफी बरस हो गए ये बताते बताते कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं है, है ना? एक बार छप गया कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और बहुत अच्छी तरह से डार्विन ने बता भी दिया, और उसको टीचर्स ने मान लिया, तो टीचर मानेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, तो बच्चे तो यस करके चलेंगे ना। तो इसीलिए स्टोरी सुनिए ना, वो बंदर और मनुष्य की ऐसी हालत है कि हम देखते कुछ और है, लेकिन ये बीच वाली जो बात है, हम भी बीच में हो जाने से ना सही बन पाते हैं, अपने वैल्यूज को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन ट्रेडिशन। ट्रेडिशन में क्या है, टेम्पोरर वैल्यू को हम प्रायोरिटी देते हैं, देते हैं ना प्रायोरिटी, क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं, मूल्य चलता है, हम कहते चलता है, इतना तो चलता है। ये जो कई बार बच्चों को आप कहेंगे ना, बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या हो गया, इतना तो चलता है ना, हा? लेकिन तो क्या हो गया, चलता है ये, इसको अभी आज के समय में ट्रेडिशन बना लिया है। तो ये जो है यूनिवर्सल वैल्यूज में और हमारे जो परंपरा आधारित मूल्य है, इन सभी के अंदर हमारी आंतरिक जो क्वालिटी, इनर क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा इधर उधर करता है, इसीलिए भी हम वैल्यूज को धारण नहीं कर पाते, कठिनाई आती है, चैलेंजेस, प्रैक्टिसिंग वैल्यूज में चैलेंजेस हैं। एक तो होती है इंटरनल चैलेंजेस और दूसरी है एक्सटर्नल चैलेंजेस। इंटरनल चैलेंजेस क्या है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, ईगो है, फॉल्स प्राइड है, जलसी, फियर, इन सब के कारण भी वैल्यू, मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन अगर मैं बता दूंगी तो शायद क्या होगा, मेरी वैल्यू सबके सामने डाउन हो जाएगी, मेरी कमजोरी अगर मैंने बता दी, या अगर मेरे पास मोबाइल नहीं है और वो बहन के पास बहुत अच्छा मोबाइल है, हाँ, तो देखा देखा ब्रह्मा कुमारी बहन है, फिर भी कितनी बड़ी, हाँ, इतना महंगा महंगा मोबाइल यूज करते, बाबा तो क्या कहते हैं, तुरंत ज्ञान सुनाने के लिए तैयार रहते हम। तो कई बार ऐसी चीजें हैं, ये हमारे लिए मूल्य धारण करने के लिए इंटरनल चैलेंजेस है, आंतरिक। कई बार हमारा ईगो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है, किसी ने कह दिया कि बहन जी आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो हमारा ईगो, ऐसा थोड़ी है, मुझे ऐसे ही थोड़ी ना पांडेवणी भाई या हरीश भाई ने या मृत्युंजय भाई ने यहां खड़ा किया है, मुझे कुछ आता होगा तभी तो खड़ा किया है ना, मेरा ईगो हर्ट होता है। लेकिन जब मैं वैल्यू एजुकेशन अगर मैंने पढ़ा है तो मेरे अंदर, अगर मैंने वैल्यूज को एक्सप्लोर किया है तो मेरे अंदर ये ईगो नहीं होना चाहिए। आपने जब ये कहा कि बहन जी आप अच्छा नहीं पढ़ाती है, मानते हैं, हो सकता है आप में ये गुण अभी बाकी है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरी वैल्यूज मैंने एक्सप्लोर की है, अन्यथा नहीं। ये चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस के कारण ही लोग वैल्यू एजुकेशन नहीं पढ़ते। क्योंकि एक वकील झूठ बोलता है ना तो उसको कोई नहीं बोलता, एक डॉक्टर यदि मर्डर कर देता है ऑपरेशन के थिएटर में तो उसको कोई नहीं बोलता, लेकिन एक टीचर, पढ़ाने वाला टीचर, यदि वो कुछ ऐसा वैसा बोल जाए, क्योंकि हम कभी कभी सुनते हैं वैल्यू एजुकेशन, बहन जी देखो वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहे हो, देखो ये वैल्यू एजुकेशन वाले क्या वैल्यू, क्या वैल्यू, हाँ बहुत सुनते हैं, तब हमको ऐसा लगता है, फिर हम पूछते हैं क्या आपने वैल्यू एजुकेशन पढ़ा भाई साहब, बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ा, पर आपने पढ़ा है ना, आपको पता है, इसको वैल्यू कहते हैं। तो वैल्यूज में चैलेंजेस आती है, आपको लोग सुनाएंगे भी लेकिन फिर भी आपको इग्नोर करके, क्योंकि फिर मैं कहती हूं इतना छोटा सा तो दिमाग है मेरा, उसमें मैं कितना कितना डालूंगी, इतने छोटे से दिमाग में तो मैंने पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, एमएससी, बीएससी, पता नहीं क्या क्या डाल रखा है, और लाइफ में बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी करने के लिए, तो इन छोटी छोटी बातों को हम जब तक इग्नोर नहीं करेंगे तब तक हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे और उससे उसको दूर भी नहीं कर सकते। तो जब हम चैलेंजेस नहीं स्वीकार करते, उसको दूर नहीं करते, तो फिर वैल्यूज को कैसे हम अपनी लाइफ में एडॉप्ट करेंगे। एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या आती है, पीपल, दूसरे लोग, जैसे अभी बताया ना दूसरे लोग, फिर सिचुएशंस, जो हमारी सामने सिचुएशंस आती है, सोशल आती है चाहे प्रोफेशनल लाइफ में आती है, ये सारी जो है वर्क प्लेस में आती है, ऑफिस में आती है, बहुत सारी चैलेंजेस आती है, वो एक्सटर्नल चैलेंजेस है। तो ये सारी वैल्यूज जो है इसमें, ये तो वैल्यूज के बारे में बताया, चैलेंजेस के बारे में बताया, दूसरा यूनिट है इसमें नीड एंड चैलेंजेस इन वैल्यू एडॉप्शन, मूल्यों को धारण करने के लिए, सॉरी चुनौतियां, जो चुनौतियां आती है उसमें मूल्य शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती, हमने मूल्य शिक्षा ली है तो यदि मैंने मूल्य शिक्षा ली है तो मैं कैसे, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। अब जब से मैंने मूल्य शिक्षा पढ़ी है मैं आराम से नींद कर सकती हूं, लोग पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं नींद के लिए, कुछ लोग आज की दुनिया में स्ट्रेस से क्या हो जाते हैं, इनका मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन वैल्यू एजुकेशन से इन सारी बीमारियों को भी हम दूर कर सकते हैं। एजुकेशन उसमें स्पिरिचुअलिटी का होना जरूरी है, एक बात। अब हम बताते हैं कि जब वैल्यू एजुकेशन को, हमें वैल्यूज को अपने जीवन में धारण करना है तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा रास्ता है, तो स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। क्यों स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वो चीज है जो व्यक्ति को धर्म, वर्ग, जाति, भाषा सब भेदभाव से दूर रखती है, वो केवल मनुष्य आत्मा को मनुष्य आत्मा के रूप में ही देखते हैं, वो किसी जाति के या आप पराए हम, हाँ आप इस धर्म के, हम ये धर्म के, ऐसे नहीं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कभी किसी को ऐसे नहीं पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या, वो नाम तो बताता है लेकिन ये नहीं पूछते आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, हम कभी नहीं पूछते। ये हमारी सबसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अच्छी क्वालिटी है कि हम कभी किसी को, कोई भाई बहन को उसकी जाति नहीं पूछते, उसका धर्म नहीं पूछते हैं। जो भी बाबा के घर में आया वो क्या हो गया, भगवान के घर में भगवान का बच्चा, माना सबसे पहली ये बात हम सिखाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में सबसे पहली ये बात आती है कि मैं कौन हूं, तो मेरा परिवार कौन सा है और मेरा समाज कौन सा है और मेरा राष्ट्र कौन सा है, हम सब कौन है, पूरा विश्व हमारा राष्ट्र है, हम ये कहते हैं, पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल हमारे सामने दादी और जगदीश भाई जी के कोटेशन इसमें कोट किए हैं। अच्छे अच्छे कोटेशन को भी देखना चाहिए, उसको भी कलेक्ट करो, एक टीम बना सकते हैं वैल्यू एजुकेशन की, आप जो ऐसी टीम बना सकते हैं कि आप किसी को सेवा ऐसी दो, कोई कहे कि मुझे सेवा नहीं है हमारे पास, तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरे पास कोई आता है बहन जी एजुकेशन में हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो हम ये कहते हैं अच्छा चलो आप ऐसा करो, आप कोई कहता है हम तो संस्कृत पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं आप संस्कृत के अच्छे अच्छे सुभाषित जो है ना वो हमको ला करके रिसर्च करो, तो वर्क मिल जाता है। तो हमारे एक भाई कहते हैं कि आपके पास तो कोई भी आता है ना सबको आप धंधे पे लगा देते हो, किसी को फ्री नहीं छोड़ते हो, बोले काम लेने की अच्छी कला है आप। तो हमने कहा कोई आए आत्मा तो उसको संतुष्ट तो करना पड़ता है ना, और उसके आधार पर बन भी जाता है, ऐसे स्टोरी कलेक्शन करते करते स्टोरी बुक बन गई। तो इसी तरह से हम लोगों की क्वालिटीज को भी पहचानने में सक्षम हो जाते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है ना वो क्वालिटी को भी देख करके क्वालिटी का भी उपयोग करता है। दादियां क्या करती हैं, दादी क्या करती है हमारे संस्था चलाती है दादी, लेकिन दादी क्या करते हैं, सबकी क्वालिटी को देख करके उस क्वालिटी के आधार पर उनको उनसे सेवा लेते हैं। तो बाबा जो है, बाबा ने भी क्या किया, ये तो हम यहां बाबा बोल रहे हैं शब्द, वैसे वहां हम बाबा नहीं कहेंगे, वहां तो हम कहते हैं कि जो लीडर होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों की क्वालिटी को देखता है और उस अनुसार उसको शिक्षा देता है कि 5 बच्चे 10 बच्चे इस क्वालिटी के हैं क्लास में, 10 बच्चे इस क्वालिटी के हैं, तो वो स्पेशल उनको कोचिंग करता है। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअल जो होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है वही जिसके अंदर वो वैल्यूज को समझ सकता है, वही वैल्यू को जीवन में धारण कर सकता है। ये जैकस, ये इनके डेलर्स के 4 शिक्षा के स्तंभ बताए कि क्यों आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो ये 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टूगेदर और लर्निंग टू बी, साथ में रहना, जानने के लिए, करने के लिए, हाँ एक साथ जीवन जीने के लिए, ये सब शिक्षा के 4 स्तंभ जैकी स्टॉलर्स ने बताए हैं। इसमें करप्शन एंड इलीगल प्रैक्टिसेस आती, आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने करप्शन की है। कई बार हम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार, हम रिश्वत नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी दे देते हैं, तो देना भी क्या हुआ, रिश्वत ही हुआ ना। दहेज लेते नहीं हैं, लेकिन दहेज दे देते हैं, तो उससे क्या हुआ, ये भी करप्शन ही हुआ, वन टाइप ऑफ, किसी का यूज करना अपने लिए, फिर अपने पॉलिटिकल और सोशल पावर को यूज करना, उसके माध्यम से भी भ्रष्टाचार करना, फिर साइंस और टेक्नोलॉजी विदाउट वैल्यूज, आज की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो मोबाइल तो बनाया बात करने के लिए, लेकिन मोबाइल से ये व्हाट्सएप और ये सब क्या है, फेसबुक और व्हाट्सएप और ये सब क्या है, ये सब नीति के नीति विहीन जब बन जाते हैं तो नुकसान करते हैं। इसीलिए सभी चीजों में वैल्यूज का होना जरूरी। एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर, प्रकृति का दोहन करते हैं, पौधों को काट रहे हैं, उससे क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, हमारे हमारी मानसिक विकृति है। मुझे चाहिए क्या, सोने के लिए एक खाट, रहने के लिए एक कमरा, एक किचन, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा बंगला चाहिए। ये सब जो इच्छाएं हैं, तो इसीलिए इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती हैं, तो हम नेचर को भी नुकसान करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी करते हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल को भी मथ करके क्या करते हैं, फ्लड आदि कैसे आया। तो इसी प्रकार से इंक्रीज यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा, बढ़ती हुई हिंसा, अल्कोहल, मादक द्रव्यों का प्रयोग, सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, शराब, नशाखोरी, ये सब करने से जब माइंड ही इंबैलेंस हो गया तो वैल्यूज को पहचानेंगे भी नहीं, है ना। तो वैल्यूज को, वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि दुनिया में आज की ये भयंकर समस्याएं हैं, इसीलिए वैल्यूज को एडप्ट करने के लिए भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ एजुकेशन इन वैल्यूज एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल पर मूल्यों की शिक्षा का अभाव है। मूल्य होने चाहिए, सभी मानते, लेकिन परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, कहां से कहां कैसे पढ़ाएं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन मूल्यों को कैसे पढ़ाएं, और पढ़ाएं तो कौन पढ़ाए, क्योंकि सभी इन सब परिस्थितियों में इस प्रकार से डूबे हुए हैं। मूल्यों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। एग्जाम में बच्चे एग्जाम में भी क्या करते हैं, चिट लेकर के एग्जाम में बैठते हैं। अब चिट देखूं तो मेरा कॉन्शियस ये कहता है कि चिट देखिए, मुझे कॉपी केस करना है। अगर मैं कॉपी केस करती हूं तो बच्चा कहता है आपके कारण मेरी लाइफ स्पॉइल्ड हो गई, तो रात को नींद नहीं आती है, टीचर्स को ऐसे हाल हो गए हैं, या फिर गवर्नमेंट का प्रेशर है, या बच्चों के माता पिता का प्रेशर है, हमारे बच्चे को ऐसा क्या कह दिया, जो घर आके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं अगर फेल हो गए तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ऐसे में वैल्यूज को कैसे अपने लाइफ में बरकरार रखे, फिर तो बोले नरोवा कुंजरोवा बोलना ही पड़ेगा ना, है, फिर तो नरोवा कुंजरोवा कहना ही पड़ेगा ना, क्या होगा। इसके लिए परमात्मा ने हमें सिखाया है मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम सबसे पहले तो अपने आप पर नियंत्रण करें, अपने आप पर नियंत्रण करेंगे तो दूसरों पर नियंत्रित दूसरों को कर सकेंगे। तो ये हम उसको लिंक को जोड़ें, कैसे वैल्यूज, वैल्यूज के साथ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी से मेडिटेशन। हाँ जी, क्या आप टीचर हैं, टीचर नहीं है, शिक्षकों की आज ये कई शिक्षक सुनाते हैं, लेकिन अगर आप चिट पकड़ेंगे और कॉपी केस करेंगे तो ऐसा रेयर केस में बनता है। लेकिन आप जब पहले से ही क्या होता है कि आप खुद पहले तो अपने जीवन का एक सिद्धांत बनाकर चलिए। मैं टीचर हूं इसलिए मैं कह रही हूं कि बच्चे पहले से ही जान जाए कि ये टीचर खड़ा है, मुझे चीट नहीं करनी है। पहले से ही उसके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। मेरी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बच्चों को पता होता है, गांव में बात फैली हुई होती है कि ये मैडम यदि एग्जाम में आ जाएंगी तो चोरी नहीं करने देगी, इसीलिए लेके मत जाना, है ना। थोड़ा सा अपना स्वाभिमान पूर्वक अपनी जो डेजिग्नेशन है उसके अनुसार, और हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। मेडिटेशन के आधार पर सबसे पहले बाबा नहीं कहते कि जब ऐसा कुछ हमें पता चले तो हमें पहले उसको वाइब्रेशन देने हैं। क्लासरूम में जाने से पहले देखो जिस किसी के पास कुछ भी है आप दे दो, 5 मिनट में आप खुद भी, मैं तो खुद सबके जेब चेक करके पहले सब खाली करवा लेती, अगर होता है तो भी, मान लो होता है तो भी खाली कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा भी किसी एक को चोरी करने दिया ना तो सब करेंगे, फिर आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। इसीलिए आपको करना क्या है, अपनी डिग्निटी के अनुसार अपने आप को पहले देखना है कि मुझे क्या करना है, तो ऐसा कोई वाकया होगा नहीं। सबको हमारे सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए कि ये है, ये करेंगे, इतना तो नहीं करेंगे। फिर उस चैलेंज को आप स्वीकार करो। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है तो उसमें घबराना नहीं, क्योंकि मैंने बताओ कोई भी आएगा आपको ये कहेगा कि फिर आपने अपने बच्चों को क्यों ये सिखाया कि भाई चिट लेके करो, कॉपी करो, कभी कुछ नहीं होगा। उससे थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, इसमें ये साहस का मूल्य चाहिए, आज के समय में साहस का मूल्य। और एक बार आपने साहस पर विजय पा ली आपको शांति से नींद आ जाएगी। तो ये एजुकेशन लेवल पर, हर लेवल पर जो एजुकेशन हम देते हैं स्कूल से लेकर के कॉलेजेस में भी, हमें ये देखना है कि मूल्यों को हमें कैसे पढ़ाना है। तो उसके लिए पहले तो हमें अपनी इनर क्वालिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा ना, तो ये सारी बातें आती है। फिर एंटी वैल्यूज एक्वायर्ड थ्रू फोकलोर्स, ये हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो लोक जीवन है, लोक विश्वास है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी वैल्यूज एडॉप्शन में बहुत सारी बाधाएं पैदा करती है। जैसे कहते हैं ना, हमारा तो ये रिवाज है, हमारे तो ऐसे रिवाज है, ये रीति रिवाज है, या ये कथा है, ऐसा हुआ। बोले महाभारत किसके कारण हुआ, तो कहा महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ। क्यों, ऐसी कथाएं हैं, द्रौपदी ने ऐसा बोला, अंधे का पुत्र अंधा और महाभारत हो गया, ऐसा तो नहीं था। भाई दुर्योधन तो बचपन से ही युधिष्ठिर और पांडवों के खिलाफ था, द्रौपदी तो बाद में आई थी, है ना, और उससे पहले तो वो क्या कहते हैं, भीष्म था जिसने प्रतिज्ञा कर ली। अपने पिता की वासना को पोषित करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कुंवारा रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा, और जो आपकी बेटी का, सत्यवती का बेटा होगा उसको मैं राजपाट दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा किसके किसने बोला था भाई उसको करने के लिए। बीज कहां से होते, बीज वहां से है, और हमारी कथाएं कुछ और कह रही है। तो ये लोक कथाएं, लोक विश्वास, फोकलोर जो है, वो हमारी जो ये माइथोलॉजी है, स्टोरीज है, ये सब हमारे अंदर शुरू से सिखाई जाती है, स्कूल लेवल से, स्कूलों में ऐसी स्टोरियां सिखाई जाती है। फिर इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशन इन वैल्यूज, ये भी, चेंज द सेल्फ टू चेंज द वर्ल्ड, हम कहते हैं हम बदलेंगे, विश्व बदलेगा, ये सोसाइटी के लिए है। फिर कल्चरल चैलेंजेस है, गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी और गांधी जी ने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए थे भारत को स्वर्ग बनाने के लिए कि भाई जो भी अनटचेबल है मतलब अछूत है अछूतों का उद्धार करो, उसको सम्मान दो, है ना, मद्यपान निषेध करो, ये बहुत सारी बातें उन्होंने, महिलाओं का आदर करो। लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाओं का आदर कहाँ होता है? नारी को नरक का द्वार बोल दिया, वो तो भला हो ब्रह्मा बाबा का जिन्होंने नारियों को आगे किया, एकमात्र विश्व पुरुष वही है जिन्होंने महिलाओं को आगे किया, नहीं तो महिलाओं की दशा इस देश में गांधी जी भी नहीं सुधार सके जो राष्ट्रपिता थे, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां। इसीलिए दादी जी के जब 100 साल हुए ना तो मीडिया वालों ने कहा कि विश्व में ऐसी प्रथम महिला जो 100 साल तक किसी एक संस्था की हेड के रूप में आज भी कार्यरत है, ऐसा मीडिया वालों ने कहा। तो ये ब्रह्मा बाबा का ही भला हम कहेंगे कि खुद बहनों को आगे किया, तो ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक हिस्ट्री है, सोशल चैलेंजेस भी हैं, ये बहुत सारे इसमें ये पीपीटीज हैं। मैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी 5:23 हो गए, मुझे 5:30 पूरा करना है, समय टाइम का भी मैनेजमेंट जरूरी है, नहीं तो सामने बैठे वाले क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अभी ब्रेक चाहिएगा सबको। हाँ जी, वो तो अभी रिलीजियस चैलेंजेस है हमारे सामने, आप धर्म के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, आप अपने धर्म से दूर नहीं हो सकते, आप जिस धर्म के हो उसको मानना पड़ेगा, और दूसरे धर्म को अपना नहीं सकते, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम तो हिंदू हैं और हमारी तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है हमारे घर में तो, और आप ब्रह्मा कुमारी बन जाओ, ऐसा किसने बोला? आप नहीं बन सकते ब्रह्मा कुमार कुमारी, है ना, ये भी रिलीजियस चैलेंजेस है हमारे सामने। तो इस तरह से पर्सनल चैलेंजेस भी हैं, बौद्धिक और पर्सनल चैलेंजेस भी, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। कई बार ये जिसको हम राजसिक तामसिक और ऐसे गुणों की सतो रजो तमो की अवस्था बताते हैं, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर विवेक और बुद्धि के आधार पर ऐसी चैलेंजेस को भी हम कई बार स्वीकार नहीं कर पाते, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, कई बार ऐसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा नहीं ना देखा है ना सुना है, इसीलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि महिलाओं को घर का स्वराज दे दिया जाए, नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है कि महिला को ही ससुराल में जाना है, पुरुष कैसे जा सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, है? नहीं जा सकता, शादी करके पुरुष स्त्री के घर नहीं जा सकता, जा सकता है ना, पर्सनल चैलेंजेस है, जाएंगे तो क्या होगा पता है ना, सोशल चैलेंजेस आ जाएंगे या पारिवारिक चैलेंजेस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक हमको स्वीकार करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, कुछ ऐसी बातों, पर्सनल चैलेंजेस, ये क्या है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दोनों तरफ खींचते हैं, दोनों ही गलत है ना, इसीलिए कहा ना, ऐचत तार खरोड़ मरोड़त खूंटी या साधो यतन ठाठ तंबूरे का, कबीर कहते हैं कैसा मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, ब्रह्मा कुमारीज भी यही सिखाती हैं, मध्यम मार्ग का अनुसरण करो, हठ योग नहीं करो, साधो यतन ठाठ तंबूरे का, ऐंचत तार मरोड़त खूंटी निकसत राग हजूरे का। ज्यादा ढीला छोड़ोगे तो तंबूरे के तार को बजेगा नहीं, राग नहीं निकलेगा। ज्यादा टाइट पकड़ोगे तो टूट जाएगा, इसीलिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करो। ईगो, ये सर्प वाली कहानी आपको पता है, हाँ, कोबरा की, काटो नहीं पर फुपकारो तो सही। फिर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, पर्सनल वैल्यूज, आत्म प्रभु सत्ता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिसर्नमेंट, डिसीजन मेकिंग, फैमिली वैल्यू, पर्सनल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज में क्या आता है? केयरिंग, एक दूसरे का केयर करना, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट रहना, फेथफुल और ट्रस्टवर्दी, फॉरगिवनेस। फैमिली में फॉरगिव करना पड़ता है, भूल हो जाए तो उसको याद कर करके फैमिलीज के कोई भी सभ्य को हर्ट नहीं करना है। फॉरगिवनेस, प्रोफेशनल वैल्यूज में करेज, हिम्मत चाहिए फेस करने की, परिस्थितियों को फेस करने की हिम्मत चाहिए, घबराना नहीं है। कोऑपरेशन चाहिए। फिर सोशल वैल्यूज आती हैं, सोशल वैल्यू में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस बहुत जरूरी है। मैं क्यों सहन करूं, ऐसा नहीं, मुझे ही सहन करना है, सहनशील बनना है। यूनिटी, एकता चाहिए। और फिर ये सारी मूल्य जो है वो कब एक्सप्लोर होंगे? सोर्स क्या है? वैल्यूज का सोर्स है परमात्मा, ईश्वर, जो सुप्रीम सोल है, परमपिता परमात्मा, जो वैल्यूज को हमारे अंदर डाल सकता है। वही डाल सकता है, क्योंकि हम कौन है? हम भी आत्माएं हैं। अपने आप को, क्योंकि वैल्यूज किस में होती है? बॉडी में तो नहीं होती है ना वैल्यूज, वैल्यूज होती है आत्मा में। तो आत्मा में कौन डाल सकता है? आत्मा का पिता परमात्मा। और वो परमात्मा कैसे डालेगा? उसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के भी बहुत से तरीके हैं। कई बार हम क्या समझते हैं मेडिटेशन माना? बैठ जाओ लाल लाइट करके, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, परमात्मा प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। ऐसे बोलने से धीरे धीरे विचारों को, अपनी अंदर जो विचार चलते हैं ना, बहुत सारे विचार चलते हैं, तो विचारों को कंट्रोल भी करना जरूरी है। उसके लिए आत्मा और परमात्मा के भेद को समझना भी जरूरी, आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है वो भी समझना जरूरी, परमात्मा से हम क्या क्या ले सकते हैं, मुझे किस किस चीज की आवश्यकता है, कौन कौन से वैल्यूज की आवश्यकता है, उन वैल्यूज को हम अपने अंदर कैसे डालें। मेडिटेशन में आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास ऐसी पुस्तकें भी होंगी, ऐसे ही लोगों के अनुभव भी होंगे जिन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से बहुत सारे रोगों को दूर किया है, बहुत सारी समस्याओं को दूर किया है। वैसे 114 पेज की ये बुक है, 114 पेज को मैंने डेढ़ घंटे में पीपीटीज के माध्यम से उसमें सार को लेकर के बताया। वैसे तो बहुत बड़ा ये है, पूरा दिन जा सकता है, परंतु थोड़े में बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं यही हूं दो दिन, इसलिए आप पर्सनली मिलकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय जो है, मुकेश भाई आ गए हैं, तो समय के अभाव में ये सारी बातें मैंने थोड़ी सी की है, उसके लिए आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम शांति।